अक्सर जब किसी प्राचीन धार्मिक ग्रंथ या पुरानी कहानी की बात होती है ना, तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही सीधा सा ढांचा आता है, मतलब एक वेंडिंग मशीन जैसा।
हाँ बिल्कुल, एक वेंडिंग मशीन, अच्छे काम का सिक्का डालो और इनाम बाहर।
सही कहा, और बुरे काम करो तो सजा मिलेगी। जीवन के नियम या न्याय सब इसी सीधे फॉर्मूले पर टिके माने जाते हैं।
और पता है, ये फॉर्मूला लोगों को एक अजीब सा सुकून भी देता है। मतलब ये सोचना बहुत राहत देता है कि दुनिया एक तय ढांचे के भीतर चल रही है।
हाँ, क्योंकि इससे लगता है कि अगर कोई सही रास्ते पर है तो उसका भविष्य सुरक्षित है।
बिल्कुल, ये नियंत्रण का वो एहसास है जो सदियों से समाजों को एक साथ बांधे रखता है।
लेकिन आज की इस गहन चर्चा में हम जिस स्रोत को देखने वाले हैं, वो इस वेंडिंग मशीन को सीधे हथौड़े से तोड़ देता है।
पूरी तरह से।
आज हम डॉक्टर जॉन वॉल्टन के विस्तृत विश्लेषण पर बात कर रहे हैं। उन्होंने द बुक ऑफ जॉब के अध्याय 29 से 31 का पूरा विश्लेषण किया है, जिसे जॉब का प्रवचन कहा जाता है।
और ये विश्लेषण वाकई कमाल का है।
हमारा मकसद भी यही समझना है कि कैसे एक व्यक्ति जिसने अपना सब कुछ खो दिया है, वो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति के खिलाफ एक बहुत ही चतुर कानूनी दांव चलता है।
क्योंकि ये सिर्फ एक पीड़ित इंसान के रोने धोने की कहानी नहीं है। डॉक्टर वॉल्टन दिखाते हैं कि ये न्याय और आत्मसम्मान की एक बहुत ही जटिल रणनीतिक लड़ाई है।
मतलब कोई लीगल थ्रिलर चल रहा हो जैसे। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस प्रवचन वाले हिस्से की बनावट कैसी है?
तो कहानी की बनावट समझना सबसे जरूरी है। यहाँ तीन मुख्य वक्ता हैं। पहला है जोब, दूसरा एलिहू और तीसरा है यावे, यानी स्वयं ईश्वर।
लेकिन मैंने यहाँ एक अजीब चीज नोटिस की। जब हम भाषणों को देखते हैं तो जोब 3 बार बोलता है और ईश्वर 2 बार।
हाँ सही कहा आपने।
लेकिन ये एलिहू नाम का किरदार 4 बार बोलता है, मतलब कोई भी नया इंसान सोचेगा कि यही मुख्य किरदार है।
और यही लेखक की सबसे शानदार तकनीक है। डॉक्टर वॉल्टन समझाते हैं कि एलिहू को 4 भाषण देना एक रेड हेरिंग की तरह है।
रेड हेरिंग मतलब सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए।
बिल्कुल, देखिए, जब पढ़ने वाला व्यक्ति जॉब के दर्द को महसूस कर रहा होता है तो वो भी इंतजार कर रहा होता है कि ईश्वर कब जवाब देंगे।
तनाव बढ़ रहा होता है।
हाँ, और लेखक जानबूझकर एलिहू को लगातार बोलने का मौका देता है ताकि वो इंतजार और लंबा हो जाए। असल में मुख्य फोकस जॉब की उस आंतरिक यात्रा पर ही है जो अध्याय 29 से शुरू होती है।
अच्छा, तो सीधा उसी यात्रा पर चलते। अध्याय 29 में जॉब अपने अतीत के बारे में बात कर रहे हैं ना?
हाँ, डॉक्टर वॉल्टन इसे अतीत की सुसंगति कहते हैं। ये वो समय था जब वो प्रतिफल वाला सिद्धांत एकदम सटीक काम कर रहा था।
मतलब वो वेंडिंग मशीन बिल्कुल सही चल रही थी।
एकदम सही। जॉब याद करता है कि वो ईश्वर से डरता था, सब कुछ सही कर रहा था और बदले में उसके पास पैसा भी था और रुतबा भी।
लेकिन फिर अध्याय 30 आता है और स्थिति पूरी तरह बदल जाती है।
वो सुसंगति एक झटके में विसंगति में बदल जाती है, वर्तमान की विसंगति।
और यहाँ का विवरण बहुत ही मार्मिक है। मतलब उसका परिवार छिन गया, संपत्ति राख हो गई, शरीर पर बीमारियां हैं।
लेकिन डॉक्टर वॉल्टन यहाँ एक बहुत गहरी बात बताते हैं। जॉब का सबसे बड़ा दर्द वो शारीरिक पीड़ा या कूड़े के ढेर पर बैठना नहीं था।
तो सबसे बड़ा दर्द क्या था?
उसका असली दर्द वो सामाजिक पतन था जो वो झेल रहा था। जॉब सिर्फ एक जगह बैठा नहीं था, वो शहर में घूम रहा था और लोग उसका तिरस्कार कर रहे थे।
ओ, उसे समाज से पूरी तरह बाहर कर दिया गया था।
बिल्कुल, जिन लोगों ने कल तक उसे सम्मान दिया वही अब उस पर थूक रहे थे।
ये तो ये कुछ वैसा ही है जैसे कल तक कोई इंसान किसी फॉर्च्यून 500 कंपनी का सबसे सफल CEO हो।
सही उदाहरण है।
मतलब दुनिया भर के लोग उसकी सलाह मानते हो और अचानक अगले ही दिन वो सड़क पर फटे हाल घूम रहा हो और वही समाज उस पर हंस रहा हो।
और ये सामाजिक बेइज्जती किसी भी शारीरिक घाव से ज्यादा गहरी होती है। इंसान का पूरा विश्व दृष्टिकोण ढह जाता है।
तो जब दुनिया इस तरह ढह जाती है तो लोग कोई ना कोई शॉर्टकट खोजने लगते हैं ना?
हाँ, और जॉब के दोस्तों ने भी उसे यही सलाह दी। उन्होंने उसे वापस संतुलन पाने का एक रास्ता सुझाया जिसे हम तुष्टिकरण कह सकते हैं।
तो उनके दोस्तों का रास्ता क्या था? क्योंकि बाहर से देखने पर तो लगता है कि वे बस उसकी मदद करना चाहते थे।
उनका नजरिया उस समय के प्राचीन निकट पूर्व की एक आम धारणा पर टिका था। डॉक्टर वॉल्टन इसे महान सहजीविता कहते हैं।
महान सहजीविता, इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब है देवताओं और इंसानों के बीच एक सीधा लेन देन, मतलब अगर ईश्वर नाराज है तो इसका मतलब है कि उसकी कोई जरूरत पूरी नहीं हो रही है।
अच्छा, तो उसे खुश करो और वो सब वापस दे देगा।
बिल्कुल, दोस्तों का तर्क था कि ईश्वर को जो चाहिए वो दे दो, कुछ कर्म कांड करो, माफी मांगो और अपना सामान वापस ले लो।
लेकिन एक मिनट, मुझे यहाँ एक बात अजीब लग रही है। सोचिए, कोई इंसान भयानक पीड़ा में है, उसका सब कुछ खत्म हो गया है,
स्थिति डरावनी है। हाँ।
तो क्या उसके लिए बस माफी मांगने में ज्यादा व्यवहारिक नहीं था? मतलब भले ही गलती ना की हो, पर अपना जीवन वापस पाने के लिए माफी मांग लेना क्या समझदारी नहीं थी?
ये सवाल बहुत वाजिब है। अक्सर लगता है कि वो बस अपने अहंकार में अड़ा हुआ था।
हाँ, क्या ये सिर्फ जॉब का अहंकार नहीं है?
डॉक्टर वॉल्टन कहते हैं कि नहीं, ये अहंकार नहीं है, यही इस पूरी किताब का मुख्य मुद्दा है। देखिए, अगर जॉब माफी मांग लेता तो इसका मतलब क्या होता?
क्या मतलब होता?
इसका मतलब होता कि उसकी नेकी या उसका धर्म पूरी तरह से स्वार्थ से प्रेरित था, मतलब वो निस्वार्थ नहीं था।
ओह, मैं समझ रही हूँ। मतलब वो अच्छे काम इसलिए कर रहा था ताकि उसे वो फायदे मिलते रहे।
बिल्कुल, वो ईश्वर से नहीं बल्कि उन फायदों से प्यार करता था, और शुरुआत में उस चुनौती देने वाले ने यही तो आरोप लगाया था ना।
हाँ, उसने कहा था कि सामान छीन लो, फिर देखना जॉब क्या करता है।
दो से ज्यादा अपनी नेकी प्यारी है।
तो उसने उस लेन देन वाले धर्म को पूरी तरह ठुकरा दिया।
हाँ, और अब चुनौती ये थी कि जॉब खुद ईश्वर की नीतियों पर सवाल उठा रहा था कि अच्छे लोगों को कष्ट क्यों मिलता है।
तो यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जॉब ने दोस्तों की सलाह तो ठुकरा दी, लेकिन उसका दर्द तो अभी भी वही है, समाज अभी भी तिरस्कार कर रहा है।
और यहीं पर वो अध्याय 31 आता है जो इस पूरी चर्चा का टर्निंग पॉइंट है। यहाँ जॉब रक्षात्मक रवैया छोड़कर पूरी तरह आक्रामक हो जाता है।
मतलब वो खुद संतुलन खोजने का कोई नया तरीका निकालता है।
वो एक मास्टर स्ट्रोक खेलता है, वो एक निर्दोषिता की शपथ लेता है, और ये भी आम कसम नहीं है।
तो इस शपथ में खास क्या है? डॉक्टर वॉल्टन इसके बारे में क्या कहते हैं?
वो उन सभी अपराधों की एक बहुत लंबी सूची गिनाता है जो उसने कभी नहीं किए। जैसे उसने किसी गरीब को भूखा नहीं सोने दिया या किसी विधवा को रोने नहीं दिया।
अच्छा, वो अपना पूरा रिकॉर्ड अदालत में रख रहा है, लेकिन वो ये सब कर क्यों रहा है? क्या उसे अपना पैसा वापस चाहिए?
नहीं, डॉक्टर वॉल्टन बहुत स्पष्ट करते हैं कि उसे अब अपने सामान में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसका लक्ष्य अपना रुतबा और सबसे बड़ी बात अपनी दोष मुक्ति वापस पाना है।
उसे साबित करना है कि वो गलत नहीं था। लेकिन रुकिए, यह एक तार्किक सवाल है। क्या ईश्वर को पहले से नहीं पता कि जॉब निर्दोष है?
बहुत अच्छा सवाल है।
मतलब ईश्वर तो सब जानता है ना, तो फिर अदालत में सबूत पेश करने की क्या जरूरत है?
यही हमें समझना होगा कि जॉब इस समय एक भक्त की तरह नहीं बल्कि एक वादी की तरह सोच रहा है। प्राचीन काल में देवता की चुप्पी का मतलब होता था कि इंसान दोषी है।
ओह, तो वो जो ईश्वर की चुप्पी थी वो जॉब के खिलाफ जा रही थी।
बिल्कुल, डॉक्टर वॉल्टन इसे बहिरा कर देने वाली चुप्पी कहते हैं। जॉब की सजा जारी थी क्योंकि ईश्वर चुप था।
तो जॉब को ईश्वर का बयान चाहिए था, लेकिन जब ईश्वर नहीं बोलता तो जॉब क्या करता है?
वो शपथ लेकर गेंद सीधे ईश्वर के पाले में डाल देता है। वो अनिवार्य रूप से कहता है कि अगर मैंने इनमें से कोई भी अपराध किया है तो मुझे अभी मार डालो।
बाप रे, उसने खुद अपनी मौत की शर्त रख दी।
हाँ, और यही रणनीति है। अगर ईश्वर उसे नहीं मारता, यानी अगर ईश्वर चुप रहता है, तो जॉब खुद को निर्दोष घोषित कर सकता है।
ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई कर्मचारी किसी बहुत बड़े कॉर्पोरेट विवाद में कंपनी के मालिक को एक औपचारिक ईमेल भेजे।
हाँ, एकदम सही तुलना है।
और वो ईमेल में लिखे कि अगर मुझे आपकी तरफ से शाम 5 बजे तक कोई जवाब नहीं मिलता है तो मैं मान लूंगी कि आप मेरी बातों से पूरी तरह सहमत हैं।
डिफॉल्ट क्लॉज।
हाँ, उसने ब्रह्मांड के रचयिता के खिलाफ एक डिफॉल्ट क्लॉज लगा दिया है। उसने उसी चुप्पी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया जो उसे बर्बाद कर रही थी।
ये भयानक बौद्धिक छलांग है। उसने उस चुप्पी को हथियार बना लिया। लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो इसके परिणाम बहुत बड़े हैं।
मतलब अगर ये चाल सफल होती है तो क्या होगा?
डॉक्टर वॉल्टन बताते हैं कि जॉब ने खुद को एक त्रिपोण में फंसा लिया है। एक तरफ जॉब है, दूसरी तरफ ईश्वर की प्रतिष्ठा और तीसरी तरफ न्याय।
तो अब क्या दांव पर है?
अब जॉब के लिए अपनी खुद की नेकी ईश्वर की प्रतिष्ठा से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। अगर जॉब जीत जाता है तो ईश्वर की नीतियां ध्वस्त हो जाती हैं।
मतलब अगर जॉब निर्दोष साबित हो गया तो ईश्वर की सजा गलत साबित हो जाएगी?
बिल्कुल, और तब ईश्वर न्यायपूर्ण या बुद्धिमान नहीं रह जाता। डॉक्टर वॉल्टन कहते हैं कि फिर ईश्वर महज एक क्योस क्रिएचर, यानी एक अराजक प्राणी बनकर रह जाता है।
क्योस क्रिएचर, ये तो कहानी का एकदम शानदार उलटफेर है
ना?
क्योंकि अध्याय 3 में जॉब रोते हुए पूछ रहा था कि ईश्वर मेरे साथ किसी केओस क्रिएचर जैसा व्यवहार क्यों कर रहा है।
हाँ, वो बस दर्द में था।
और अब अध्याय 31 में जॉब अपनी रणनीति से ईश्वर को ही केओस क्रिएचर बना रहा है।
ये बहुत ही साहसिक कदम है। जरा सोचिए, अगर वो दोस्तों की बात मान लेता तो ईश्वर एक आम लेन देन वाला देवता बनकर रह जाता।
जो कि बहुत छोटी बात होती।
हाँ, लेकिन इस नई रणनीति में तो ईश्वर बिल्कुल ईश्वर ही नहीं रह जाता। अब सीधे तौर पर ईश्वर का चरित्र दांव पर है।
तो जो चुनौती शुरुआत में दी गई थी, ये उससे भी बहुत बड़ी बात हो गई।
बहुत बड़ी।
जॉब अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए पूरे न्याय तंत्र को कटघरे में खड़ा कर देता है।
तो इस सबका क्या मतलब है? अगर हम इस पूरी गहरी चर्चा को समेटें तो डॉक्टर वॉल्टन का विश्लेषण हमें क्या दिखाता है?
वो यही दिखाते हैं कि यह कोई साधारण उपदेशात्मक कहानी नहीं है, या एक ऐसे इंसान की कहानी है जो सब खोने के बाद भी हार नहीं मानता और स्वयं ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती दे डालता है।
हाँ, अपनी सच्चाई के लिए उस व्यवस्था से लड़ जाता है जिसने उसे धोखा दिया है।
और यही बात इस प्राचीन ग्रंथ को आज भी हमारे लिए इतना प्रासंगिक बनाती है।
बिल्कुल, ये सिर्फ दुख सहने के बारे में नहीं है। और हम उसी वेंडिंग मशीन वाले विचार पर वापस आ जाते हैं।
जब वो मशीन टूट जाती है।
हाँ, जब जीवन के नियम अचानक काम करना बंद कर देते हैं, तो सोचने वाली बात ये है कि जब कोई व्यक्ति गहरे अन्याय से गुजरता है, तो क्या वो अनजाने में अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उस पूरी व्यवस्था या सिस्टम को ही नष्ट करने के लिए तैयार हो जाता है?
बहुत गहरा सवाल है।
जिस पर उसने कभी पूरा भरोसा किया था, क्या इंसान का आत्मसम्मान और सही साबित होने की चाहत ब्रह्मांड के न्याय से भी बड़ी हो सकती है?
वाकई ये सोचने पर मजबूर करता है।
इस पर जरूर विचार कीजिएगा।